होशेया अध्याय एक। यहावे का वह संदेश जो बैरी के पुत्र होशिया के पास यहूदिया के राजा उज्जिया, योथाम, आहाज और हिजिकिया के शासनकाल में और इज़राइल के राजा यहोआश के पुत्र यरोबाम के शासनकाल में आया। होशिया की पत्नी और बच्चे। अपनी बात को शुरू करते हुए यहावे ने होशिया से कहा, जाओ और किसी वेश्या से शादी कर लो और उससे बच्चे पैदा करो, क्योंकि एक व्यभिचारी पत्नी की तरह यह देश यहावे से विश्वासघात करने का अपराधी है। अतः होशिया ने दिबलाइम की बेटी गोमर से शादी की और वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब यहावे ने होशिया से कहा, उसका नाम येज्रील रखो, क्योंकि शीघ्र ही येज्रील में किए नरसंहार के लिए मैं येहू के घराने को दंड दूंगा और मैं इज़राइल के राज्य का अंत कर दूंगा। उस दिन मैं येज्रील की घाटी में इज़राइल की सैन्य शक्ति का अंत कर दूंगा। गोमेर फिर गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। तब यहावे ने होशिया को कहा, तुम उसका नाम लो रुहामा रखो, क्योंकि अब मैं इज़राइल के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाऊंगा और उन्हें किसी प्रकार से क्षमा नहीं करूंगा, किंतु मैं यहूदिया पर अपना प्रेम दिखाऊंगा और उन्हें बचाऊंगा। यह बचाओ ना तो धनुष, तलवार या युद्ध के द्वारा या घोड़ों और घुड़सवारों के द्वारा होगा, पर मैं यहावे उनका परमेश्वर उनको बचाऊंगा। गोमेर ने लो रुहामा का दूध छुड़ाने के बाद एक और बेटे को जन्म दिया। तब यहावे ने कहा, उसका नाम लो अम्मी रखो, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं। फिर भी इसराइलियों की संख्या समुद्र तट के बालू के जैसे होगी, जिन्हें ना तो नापा जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है। जिस स्थान पर उनसे यह कहा गया था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान पर वे जीवित परमेश्वर की संतान घोषित किए जाएंगे। यहूदिया के लोग और इज़राइल के लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, वे मिलकर अपने लिए एक नेता ठहराएंगे और वे देश से निकल आएंगे, क्योंकि येज्रील का वह दिन एक महान दिन होगा। होशेया अध्याय दो। अपने भाइयों से कहो, मेरे लोग, और अपनी बहनों से कहो, मेरे प्रिय लोग। इज़राइल का दंड और पुनः स्थापना। अपनी माता को डांटो, उसे डांटो, क्योंकि वह मेरी पत्नी नहीं है और मैं उसका पति नहीं हूं। वह अपने चेहरे से व्यभिचारी भावना और अपने स्तनों के बीच से विश्वासघात को दूर करे, अन्यथा मैं उसके कपड़े उतार कर उसे ऐसी नंगी कर दूंगा जैसे वह अपने जन्म के समय थी। मैं उसे मरुस्थल के समान बना दूंगा, उसे एक सूखी भूमि में बदल दूंगा और उसे प्यास से मारूंगा। मैं उसके बच्चों के प्रति प्रेम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वे व्यभिचार से पैदा हुए बच्चे हैं। उनकी माता ने विश्वासघात किया है और वे कलंक से उसके गर्भ में पड़े। उसने कहा, मैं अपने प्रेमियों के पीछे जाऊंगी, जो मुझे मेरा भोजन पानी, मेरा ऊनी और सन के कपड़े, मेरा जैतून तेल और मेरा दाख मधु देते हैं। इसलिए मैं उसके रास्तों को कटीली झाड़ियों से बंद कर दूंगा। मैं उसके आगे दीवार खड़ी कर दूंगा, जिससे उसे उसका रास्ता नहीं मिलेगा। वह अपने प्रेमियों का पीछा करेगी, पर उन्हें पकड़ नहीं सकेगी। वह उन्हें खोजेगी, पर वे उसे नहीं मिलेंगे। तब वह कहेगी, मैं पहले के समान अपने पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि तब मेरी स्थिति अब की अपेक्षा बेहतर थी। उसने इस बात को नहीं माना है कि वह मैं ही था जिसने उसे अन्न, नई दाख मधु और तेल दिया था, जिसने उस पर खुले हाथों से सोना चांदी लुटाया था, जिसका उपयोग उन्होंने बाल देवता के लिए किया। इसलिए मैं अपने अन्न को ले लूंगा जब वह पक जाएगा और अपनी नई दाख मधु को ले लूंगा जब वह तैयार हो जाएगा। मैं अपने ऊन और सन के कपड़े वापस ले लूंगा जिसे मैंने उसे उसके नंगे तन को ढांपने के लिए दिए थे। इसलिए अब मैं उसकी अश्लीलता को उसके प्रेमियों के सामने प्रकट करूंगा, कोई भी उसे मेरे हाथ से छुड़ा ना सकेगा। मैं उसके सब उत्सवों को बंद कर दूंगा, उसके वार्षिक त्योहार, उसके नए चांद का उत्सव, उसके शब्बात का उत्सव, उसके सब निर्धारित त्योहारों को बंद कर दूंगा। मैं उसके अंगूर की लताओं और अंजीर के पेड़ों को नष्ट कर दूंगा जिनके बारे में वह कहती है कि यह मेरी मजदूरी है जिसे मेरे प्रेमियों ने दिया था। मैं उनको एक झाड़ी बना दूंगा और जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। मैं उसे उस बात के लिए दंड दूंगा कि उसने बाल देवताओं के लिए धूप जलाया। वह अपने आप को नथनी और गहनों से सजाती और अपने प्रेमियों के पीछे जाती थी, पर मुझको वह भूल गई, यहावे की घोषणा है। इसलिए मैं उसे ललचाऊंगा, मैं उसे निर्जन जगह में ले जाऊंगा और उससे कोमलता से बात करूंगा। वहां मैं उसे उसकी अंगूर की बारियां लौटा दूंगा और आकोर घाटी को आशा का द्वार बना दूंगा। वहां वह ऐसे जवाब देगी जैसे वह अपने जवानी के दिनों में दिया करती थी, अर्थात जैसे वह मिस्र देश से निकलकर आने के समय दिया करती थी। यहां वे घोषणा करते हैं, उस दिन तुम मुझे मेरा पति कहोगी, तुम मुझे फिर कभी अपना मालिक नहीं कहोगी। मैं उसके मुंह से बाल देवताओं का नाम मिटा दूंगा, उनका नाम फिर कभी ना लिया जाएगा। उस दिन मैं उनके लिए जंगली जानवरों, आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ एक वाचा बांधूंगा। धनुष और तलवार और युद्ध को मैं देश से समाप्त कर दूंगा ताकि लोग निडर होकर आराम करें। मैं तुम्हें सदा के लिए विवाह का वचन दूंगा। मैं तुमको धर्मीपन और सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ विवाह का वचन दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास योग्यता के साथ विवाह का वचन दूंगा और तुम यहावे को जान जाओगी। यहावे की घोषणा है, उस दिन मैं जवाब दूंगा, मैं आकाशमंडल को जवाब दूंगा और वे पृथ्वी को जवाब देंगे, और पृथ्वी अन्न, नई दाख मधु और जैतून तेल को जवाब देगी, और वे येज़रील को जवाब देंगे। तब मैं स्वयं उस देश में उसका रोपण करूंगा, मैं उसे अपना प्रेम दिखाऊंगा जिसे मैं अपना प्रिय नहीं कहता। वे जो मेरे लोग नहीं कहे जाते उन्हें मैं कहूंगा, तुम मेरे लोग हो, और वे कहेंगे, आप हमारे परमेश्वर हैं। होशिया अध्याय 3। होशिया का अपनी पत्नी के साथ समझौता। यहावे ने मुझसे कहा, जाओ और अपना प्रेम अपनी पत्नी को फिर से दिखाओ, यद्यपि उसे कोई और पुरुष प्रेम करता है और वह एक व्यभिचारिणी है। उससे ऐसा प्रेम करो जैसा यहावे इसराइलियों से प्रेम करते हैं। यद्यपि वे दूसरे देवताओं की ओर फिरकर पवित्र किशमिश की बट्टी से प्रेम रखते हैं, इसलिए मैंने उसे 15 शेकेल चांदी और लगभग 1 होमेर और 1 लेथेक जो मैं खरीद लिया। तब मैंने उससे कहा, तुम्हें मेरे साथ कई दिनों तक रहना है, तुम्हें वैश्य नहीं बनना है या किसी भी पुरुष के साथ अतरंग संबंध नहीं बनाना है, और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा, क्योंकि इजरायली लोग बहुत दिनों तक बिना राजा या राजकुमार, बिना बलि या पवित्र पत्थर, बिना एफोद या ग्रह देवताओं के रहेंगे। उसके बाद इजरायली लोग लौटेंगे और यहावे अपने परमेश्वर तथा दाविद अपने राजा की खोज करेंगे। वे आखिरी के दिनों में कांपते हुए यहावे के पास और उसके आशीषों के लिए आएंगे। होशिया अध्याय 4। इज़राइल के विरुद्ध आरोप। हे इज़राइली लोगों, यहावे की बात को सुनो, क्योंकि तुम जो इस देश में रहते हो, तुम्हारे ऊपर यहावे एक दोष लगाने वाला है। इस देश के निवासियों में परमेश्वर के प्रति ना तो विश्वास योग्यता, ना प्रेम और ना ही परमेश्वर को मानने वाली बात है। यहाँ सिर्फ शाप, झूठ और हत्या, चोरी और व्यभिचार है। वे सब सीमाओं को लांग जाते हैं और खून के बदले खून बहाते हैं। यही कारण है कि यह देश सूख जाता है, इसमें सब रहने वाले बेकार हो जाते हैं। भूमि के जानवर, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां नष्ट हो जाती है। पर कोई भी दोष ना लगाए, कोई भी दूसरे पर आरोप ना लगाए, क्योंकि तुम्हारे लोग उनके समान है जो पुरोहित के ऊपर दोष लगाते हैं। तुम दिन रात ठोकर खाते हो और तुम्हारे साथ भविष्यवक्ता भी ठोकर खाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी माता को नाश कर दूंगा। मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं, क्योंकि तुमने ज्ञान को अस्वीकार किया है। मैं भी तुम्हें पुरोहित के रूप में अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर के कानून की उपेक्षा की है। मैं भी तुम्हारे बच्चों की उपेक्षा करूंगा। जितने ज्यादा पुरोहित थे, उतने ज्यादा उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किए। उन्होंने अपने महिमा में परमेश्वर के बदले में कलंकित चीज को अपना लिया। मेरे लोगों के पाप इन पुरोहितों के भोजन बन गए हैं और वे उनके दुष्टता का आनंद लेते हैं। और यह ऐसा ही होगा, जैसे लोगों की दशा वैसे पुरोहितों की दशा। मैं उन दोनों को उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उन्हें उनके कार्यों का बदला दूंगा। वे खाएंगे पर उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा। वे व्यभिचार में लिप्त होंगे पर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यहावे को छोड़ दिया है ताकि वे व्यभिचार कर सके। पुरानी एवं नई दाखमधु उनकी समझ भ्रष्ट कर देती है। मेरे लोग लकड़ी की मूर्तियों से सलाह लेते हैं और देव्य छड़ी उनका भविष्य बताती है। व्यभिचार की एक आत्मा उन्हें भटका देती है। वे अपने परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं। वे पहाड़ों के शिखर पर बलिदान करते हैं और वे पहाड़ियों पर बांझ, चिनार और एला वृक्षों के नीचे भेंटों को जलाते हैं, जहां अच्छी छाया होती है। इसलिए तुम्हारी बेटियां वैश्यवृत्ति करने जाती है और तुम्हारी पुत्र वधुएं व्यभिचार करती हैं। जब तुम्हारी बेटियां वैश्यवृत्ति के लिए जाएंगी, तो मैं उन्हें दंड ना दूंगा और ना ही तुम्हारी पुत्र वधुओं को दंड दूंगा, जब वे व्यभिचार के लिए जाएंगी, क्योंकि पुरुष स्वयं वैश्याओं के साथ रहते हैं और मंदिर की वैश्याओं के साथ बलि चढ़ाते हैं। नासमझ लोग नष्ट हो जाएंगे। हे इसराइल, हालांकि तुम व्यभिचार करते हो, पर यहूदिया दोषी ना होने पाए। ना तो गिलगाल जाओ और ना ही ऊपर बेत आवेन को जाओ और ना ही शपथ खाना, जीवित यहावे की शपथ। इसराइली लोग हटीली कलोर के समान हटीले हैं। तब यहावे उनको चरागाह में मेमने की तरह कैसे चरा सकते हैं? एफ्राइम मूर्तियों से जुड़ गया है, उसे अकेला छोड़ दो। यहां तक कि जब उनकी दाख मधु भी खत्म हो जाती है, तब भी वे वैश्यवृत्ति में लिप्त रहते हैं। उनके शासक लज्जाजनक कामों से बहुत प्रेम रखते हैं। बवंडर उड़ाकर ले जाएगा और उनके बलिदानों के कारण उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। होशिया अध्याय 5। इज़राइल के विरुद्ध न्याय। हे पुरोहितों, यह बात सुनो। हे इसराइलियों, ध्यान दो। राजघरानों, सुनो, यह न्याय तुम्हारे विरुद्ध है। तुम मिज़पा में एक फंदा बन गए हो, ताबोर में बिछाए गए एक जाल हो। विद्रोहियों ने घोर नरसंहार किया है। मैं उन सबको अनुशासित करूंगा। मैं एफ्राइम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसराइल की बात मुझसे छिपी नहीं है। हे एफ्राइम, तुम वैश्यवृत्ति में लिप्त हो। इसराइल भ्रष्ट हो गया है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर लौटने नहीं देते। वैश्यवृत्ति की आत्मा उनके दिल में है। वे यहावे को नहीं मानते हैं। इसराइल का घमंड उसी के विरुद्ध गवाही देता है। इसराइली और तो और एफ्राइम भी अपने पापों में लड़ खड़ाते हैं। यहूदिया भी उनके साथ लड़ खड़ाता है। जब वे अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल के झुंड को लेकर यहावे की खोज में जाते हैं, तो यहावे उन्हें नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है। उन्होंने यहावे के साथ विश्वासघात किया है। वे अवैध बच्चे पैदा करते हैं। जब वे नए चांद के भोज का उत्सव मनाएंगे तो वह उनके खेतों को निगल जाएगा। गिबिया नगर में तुरी बजाओ, रामा नगर में नरसिंगा फूको, बेत आवेन में युद्ध की घोषणा ऊंची आवाज में करो। हे बिन्यामीन, हमारी अगुवाई करो। हिसाब करने के दिन एफ्राइम बेकार हो जाएगा। इसराइल के गोत्रों के बीच मैं उसी बात की घोषणा करूंगा जिसका होना निश्चित है। यहूदिया के अगुवे उनके जैसे हैं जो सीमा के पत्थरों को हटाते हैं। उन पर मैं अपना कोप पानी की बाढ़ की तरह उंडेलूंगा। एफ्राइम सताया जाता है, न्याय में कुचला गया है, क्योंकि उसने मूर्तियों के पीछे जाने की ठानी है। मैं एफ्राइम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के लोगों के लिए एक सड़न के जैसा हूँ। जब एफ्राइम ने अपनी बीमारी और यहूदिया ने अपने घाव को देखा, तब एफ्राइम अश्शूर की तरफ गया और बड़े राजा से सहायता की याचना की, परंतु वह तुम्हें ना तो चंगा कर सकता है और ना ही तुम्हारे घावों को ठीक कर सकता है, क्योंकि एफ्राइम के लिए मैं एक सिंह के जैसे और यहूदा के लिए एक बड़े सिंह के जैसा हो जाऊंगा। मैं उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और चला जाऊंगा। मैं उन्हें उठाकर ले जाऊंगा और उन्हें छुड़ाने वाला कोई न होगा। जब तक वे अपने अपराध को मान नहीं लेते और मेरी ओर लौट नहीं आते, मैं अपने स्थान में नहीं लौटूंगा। अपनी दुर्गति के समय वे मन लगाकर मेरी खोज करेंगे। होशेया अध्याय 6। इज़राइल प्रायश्चित ना करने वाला। आओ हम यहावे की ओर लौटे। उसने हमें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है, पर वह हमें चंगा करेंगे। उन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, पर वही हमारे घावों पर मरहम पट्टी करेंगे। 2 दिन के बाद वह हम में सुधार लाएंगे और 3रे दिन वह हमें हमारे पूर्व स्थिति में ले आएंगे, ताकि हम उनकी उपस्थिति में बने रहे। आओ हम यहावे को मान ले, आओ हम उसको जानने के लिए यत्न करें। जिस प्रकार निश्चित रूप से सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार वह भी निश्चित रूप से प्रकट होंगे। वह हमारे पास ठंड के वर्षा के समान, वर्षा ऋतु के बारिश के समान आएंगे जो भूमि को सींच जाती है। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हे यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा प्रेम सुबह के कोहरे के समान, बड़े सवेरे पड़ने वाले ओस के समान है जो गायब हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। मैंने अपने मुंह के वचन से मार डाला है। तब मेरा न्याय सूर्य के समान आगे बढ़ता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर दया से, और होमबलि की अपेक्षा से नहीं परमेश्वर को मानने से प्रसन्न होता हूँ। आदम के जैसे उन्होंने वाचा को तोड़ दिया है। उन्होंने वहां मेरे साथ विश्वासघात किया था। गिलाद दुष्ट काम करने वालों का एक शहर है। वहां खून के पद चिन्हों के निशान है। जैसे लुटेरे अपने शिकार के लिए छिपकर घात में रहते हैं, वैसे ही पुरोहितों के गिरोह भी करते हैं। वे अपनी बुरी योजनाओं को पूरा करते हुए शेकेम के रास्ते पर हत्या करते हैं। मैंने इज़राइल में एक भयावह चीज देखी है। वहां एफ्राइम को वैश्यवृत्ति के लिए दिया जाता है, इज़राइल अशुद्ध होता है। हे यहूदिया, तुम्हारे लिए कटनी का एक दिन ठहराया गया है, जब मैं अपने लोगों के पुराने दिनों को लौटा लाऊंगा। होशेया अध्याय 7। जब मैं इज़राइल को चंगा करूंगा, एफ्राइम के पाप और शमरिया के अपराध प्रकट किए जाएंगे। वे धोखा देते हैं, चोर घरों में चोरी करते हैं, लुटेरे गलियों में लूटमार करते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि मैं उनके सब बुरे कामों को याद रखता हूँ। उनके पाप उन्हें पूरी तरह खा जाते हैं, उनके काम हमेशा मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। वे राजा को अपनी दुष्टता और राजकुमारों को अपनी झूठी बातों से खुश रखते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं, एक जलते हुए चूल्हे के समान, जिसकी आग को रोटी बनाने वाला तब तक तेज नहीं करता जब तक वह आटा गूंदकर पकाने के लिए तैयार नहीं कर लेता। हमारे राजा के त्योहार के दिन राजकुमार दाख मधु पीकर उत्तेजित होते हैं और वह हंसी उड़ाने वालों के साथ शामिल होता है। उनके हृदय एक चूल्हे के समान है, वे उसके पास षड्यंत्र रचकर जाते हैं। उनकी लालसा रात भर सुलगती रहती है और सुबह यह आग की ज्वाला की तरह भभक उठती है। वे सब के सब चूल्हे के समान गर्म है, वे अपने शासकों को भस्म कर देते हैं। उनके सब राजा मारे जाते हैं, पर उनमें से कोई भी मुझे नहीं पुकारता। एफ्राइम अन्य राष्ट्रों के लोगों के साथ घुल मिल जाता है। एफ्राइम उस रोटी के समान है जिसे पकाते समय पलटा नहीं गया है। परदेशी उसकी शक्ति का शोषण करते हैं, पर वह इसे समझ नहीं पाता है। उसके बाल पकते जा रहे हैं, पर वह ध्यान नहीं देता है। इज़राइल का अहंकार उसके विरुद्ध गवाही देता है, पर इन सब के बावजूद वह यहावे अपने परमेश्वर के पास लौटकर नहीं आता या उसकी खोज नहीं करता। एफ्राइम एक पेंडुकी की तरह है जो आसानी से धोखा खाता है और निर्बुद्धि है। उन्होंने सहायता के लिए मिस्र को पुकारा, अब अश्शूर की ओर जाते हैं। जब वे जाते हैं तब मैं उन पर अपना जाल डालूंगा, मैं उन्हें आकाश के पक्षियों के समान नीचे गिरा दूंगा। जब मैं सुनूंगा कि वे एक साथ झुंड में इकट्ठा हो रहे हैं तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। उन पर हाय, क्योंकि वे मुझसे अलग हो गए हैं। सर्वनाश हो उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मैं उन्हें छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ, पर वे मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। वे मुझे अपने हृदय से नहीं पुकारते, पर अपने बिछोने पर पड़े विलाप करते हैं। अनाज और नई दाख मधु के लिए वे अपने देवताओं से याचना करते हुए अपने आप को घायल करते हैं, पर वे मुझसे दूर रहते हैं। मैंने उन्हें प्रशिक्षित किया और उनकी सेना को सशक्त किया, पर वे मेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे सर्वोच्च परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं, वे त्रुटिपूर्ण धनुष के समान है। उनके अगुए घमंड से भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे, इसी कारण से उन्हें मिस्र देश में ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। होशिया अध्याय 8। इज़राइल का फल भोगना। तुरही को अपने होठों पर रखो, एक गरुड़ यहावे के भवन ऊपर है, क्योंकि लोगों ने मेरी वाचा को तोड़ दिया है और मेरे कानून का पालन नहीं किया है। इज़राइल मुझसे पुकार कर कहता है, हे हमारे परमेश्वर, हम आपको मानते हैं। पर इज़राइल ने भलाई को अस्वीकार किया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे मेरी सहमति के बिना राजाओं को ठहराते हैं, वे मेरी स्वीकृति के बिना राजकुमारों को चुनते हैं। वे अपने सोना और चांदी से अपने विनाश के लिए मूर्तियां बनाते हैं। हे शमरिया, अपने बछड़े की मूर्ति को फेंक दो, मेरा क्रोध उनके विरुद्ध भड़कता है। वे कब तक शुद्धता के लिए अयोग्य ठहरेंगे? वे इज़राइल से है, यह बछड़ा एक कारीगर ने इसे बनाया है, यह परमेश्वर नहीं है। उस शमरिया के बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। वे हवा बोते हैं और बवंडर रूपी फसल काटते हैं। फसल के डंठल में बाली नहीं है, इससे आटा नहीं मिलेगा। यदि इससे अन्न पैदा होता तो परदेशी इसे खा जाते। इज़राइल को निगल लिया गया है, अब वह अन्य जनताओं के बीच ऐसा है जिसे कोई नहीं चाहता, क्योंकि वे एक भटके हुए जंगली गधे की तरह अश्शूर को चले गए हैं। एफ्राइम ने अपने आप को प्रेमियों के हाथ बेच दिया है, यद्यपि उन्होंने अपने आप को अन्य जातियों के बीच बेच दिया है, फिर भी अब मैं उनको एक साथ इकट्ठा करूंगा। शक्तिशाली राजा के सताव के कारण वे नाश होने लगेंगे। यद्यपि एफ्राइम ने पाप बलि के लिए अनेक वेदियां बनाई है, पर ये वेदियां उनके पाप करने का कारण बन गई है। मैंने उनके लिए अपने कानून से संबंधित बहुत सी बातें लिखी, पर उन्होंने उन बातों को बाहर का समझा। यद्यपि वे मुझे भेंट के रूप में बलिदान चढ़ाते हैं और यद्यपि वे मांस खाते हैं, पर यहावे उनसे खुश नहीं है। अब वह उनके दुष्ट कामों को याद करेंगे और उनके पापों के लिए दंड देंगे। वे मिस्र देश को लौटेंगे। इसराइल ने अपने बनाने वाले को भुला दिया है और महल बना लिए हैं। यहूदिया राज्य ने बहुत से नगरों का किलाबंदी कर लिया है, पर मैं उनके शहरों पर आग लगा दूंगा और उनके गढ़ जलकर भस्म हो जाएंगे। होशेया अध्याय 9। इसराइल के लिए दंड। हे इसराइल, आनंदित मत हो, दूसरे देशों के समान अति आनंदित मत हो, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। तुम हर एक खलियान में वैश्यवृत्ति से प्राप्त आय को पसंद करते हो। खलिहानों और अंगूर के रसकुंडों से लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, नई दाख मधु भी उन्हें नहीं मिलेगी। वे यहावे के देश में नहीं रहने पाएंगे। एफ्राइम मिस्र देश को लौट जाएगा और अश्शूर में वे अशुद्ध भोजन खाएंगे। वे यहावे को अंगूर की दाख मधु का पेय बलि नहीं देंगे और ना ही उनके बलिदान से परमेश्वर खुश होंगे। उस प्रकार का बलिदान उनके लिए शोक करने वालों के रोटी जैसा है। वे सब जो उसे खाते हैं वे अशुद्ध हो जाएंगे। यह भोजन उनके स्वयं के लिए होगा, इसे यहावे के मंदिर में नहीं लाया जाएगा। तुम अपने ठहराए त्योहारों के दिन यहावे के भोज के दिनों में क्या करोगे? यदि वे विनाश से बच निकलते हैं तो मिस्र देश उन्हें इकट्ठा करेगा और मौफ उन्हें दफन कर देगा। कटीली झाड़ियां उनके चांदी के वस्तुओं को ले लेंगी और उनके तंबुओं पर कांटे उग आएंगे। दंड के दिन आ रहे हैं, बदला लेने के दिन निकट है। इस बात को इसराइल जान ले, क्योंकि तुम्हारे पाप बहुत है और तुम्हारी शत्रुता बहुत ज्यादा है। भविष्यवक्ता को मूर्ख और आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को पागल समझा जाता है। भविष्यवक्ता मेरे परमेश्वर के साथ एफ्राइम के ऊपर पहरेदार है, फिर भी उसके सब रास्तों पर फंदे लगे हुए हैं और उसके परमेश्वर के भवन में शत्रुता है। वे गिबिया के दिनों के जैसे भ्रष्टाचार में बहुत डूब हुए हैं। परमेश्वर उनकी बुराई को याद करेंगे और उनके पापों के लिए उन्हें दंड देंगे। मैंने इसराइल को ऐसे पाया जैसे किसी को निर्जन स्थान में अंगूर का मिलना होता है। जब मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देखा तो यह ऐसा था मानो अंजीर के पेड़ में लगे शुरुआती फल को देखना, पर जब वे बाल पियोर में आए तो उन्होंने उस लज्जास्पद मूर्ति के लिए अपने आप को पवित्र किया और वे उतने दुष्ट हो गए जितने वे उन चीजों से प्रेम करते थे। एफ्राइम का गौरव पक्षी की तरह उड़ जाएगा, ना किसी का जन्म होगा, ना कोई गर्भवती होगी और ना ही किसी को गर्भ ठहरेगा। यदि वे बच्चों का पालन पोषण करते भी हैं तो मैं हर एक को उनसे ले लूंगा। उन पर हाय जब मैं उनसे दूर हो जाता हूँ। मैंने एफ्राइम को सोर के जैसे मनभावने स्थान में बसे हुए देखा है, पर एफ्राइम अपने बच्चों को वध करने वाले के पास ले आएगा। हे यहावे, उन्हें दीजिए, आप उन्हें क्या देंगे? उन्हें ऐसे गर्भ दीजिए जिससे गर्भपात हो जाता है, और ऐसे स्तन दीजिए जो सूखे हो। गिलगाल में उनके सब बुराई के कारण मैंने उनसे वहां घृणा की। उनके पाप में कामों के कारण मैं उन्हें अपने भवन से बाहर निकाल दूंगा। अब मैं उनसे प्रेम नहीं करूंगा। उनके सब अगुए विद्रोही है। एफ्राइम पर बीमारी लग गई है, उनकी जड़ सूख गई है, उनमें फल नहीं लगते हैं। यदि वे बच्चों को जन्म भी दे तो मैं उनके पोषित बच्चों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको अस्वीकार करेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी बातों को नहीं माना है। वे जाति जाति के लोगों के बीच भटकते फिरेंगे। होशेया अध्याय 10। इसराइल तक बढ़ने वाली अंगूर की लता थी, वह अपने लिए फल देती थी। जैसे जैसे उसके फल बढ़ते गए उसने और ज्यादा वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसका देश समृद्ध होता गया। उसने अपने पवित्र पत्थरों को सजाया। उनका हृदय धोखेबाज है और अब वे जरूर दंड भोगेंगे। यहावे उनकी वेदियों को ढहा देंगे और उनके पवित्र पत्थरों को नष्ट कर देंगे। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है क्योंकि हमने यहावे का आदर नहीं किया। पर यदि हमारा कोई राजा होता भी तो वह हमारे लिए क्या करता? वे बहुत सी प्रतिज्ञाएं करते हैं, झूठी शपथ खाते हैं और सहमति बनाते हैं। इसलिए हल चलाए गए खेत में उगे जहरीले घास पात के समान मुकदमे होने लगते हैं। जो लोग शमरिया में रहते हैं वे बेत आवेन के बछड़े के कारण डरते हैं। इसके लोग इस पर विलाप करेंगे और ऐसा ही इसके मूर्ति पूजक पुरोहित भी करेंगे, जो पहले इसके वैभव पर आनंदित हुआ करते थे, क्योंकि इसे उनसे छीनकर बंधुआई में ले लिया गया है। इसे बड़े राजा को भेंट स्वरूप देने के लिए अश्शूर ले जाया जाएगा। एफ्राइम लज्जित किया जाएगा, इसराइल भी बाहरी लोगों से नाता के कारण लज्जित होगा। शमरिया के राजा को ऐसे नष्ट किया जाएगा जैसे एक छोटी शाखा पानी के बहाव में बहकर नष्ट हो जाती है। बुराई के ऊंचे स्थान नष्ट किए जाएंगे। यह इसराइल का पाप है। उनकी इन वेदियों पर कटीले पौधे और झाड़ियां उगकर उनकी वेदियों को ढांप लेंगी। तब वे पर्वतों से कहेंगे, हमें ढांप लो, और पहाड़ियों से कहेंगे, हम पर आ गिरो। हे इसराइल, तुम गिबिया के समय से पाप करते आए हो और तुम अब भी उसी में बने हुए हो। क्या बुरे काम करने वाले गिबिया में फिर से युद्ध में नहीं फंसेंगे? जब मेरी इच्छा होगी मैं उन्हें दंड दूंगा। अन्य जातियां उनके दोगुने पाप के कारण उन्हें बंधन में डालने के लिए उनके विरुद्ध इकट्ठा होगी। एफ्राइम एक प्रशिक्षित बछिया है जिसे अन्न दावना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके सुंदर गर्दन पर एक जुआ रखूंगा। मैं एफ्राइम को हाकूंगा, यहूदा को हल चलाना जरूरी है और याकोब को मिट्टी तोड़ना जरूरी है। अपने लिए धर्मीपन का बीज बो, निश्चल प्रेम की फसल काटो और ना जूते हुए भूमि की मिट्टी को तोड़ो, क्योंकि यह समय है कि यहावे की खोज करो, जब तक कि वह आकर तुम पर धर्मीपन की वर्षा ना करे। पर तुमने दुष्टता का रोपण किया है और बुराई का फसल काटा है। तुमने छल प्रपंच का फल खाया है, क्योंकि तुम अपने स्वयं के बल और अपने योद्धाओं की बड़ी संख्या पर निर्भर रहे हो। तुम्हारे लोगों के विरुद्ध युद्ध की ललकार होगी, ताकि तुम्हारे सब गढ़ों को नष्ट कर दिया जाए, जैसा कि युद्ध के समय में शलमन ने बैत आरबेल को नष्ट किया था, जब माताओं को उनके बच्चों सहित भूमि पर पटक कर मार डाला गया था। हे बेथेल, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी दुष्टता बहुत बड़ी है। जब उस दिन बड़ी सुबह इसराइल के राजा को पूरी तरह नाश कर दिया जाएगा। होशेया अध्याय 11। इसराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। जब इसराइल बालक था मैंने उससे प्रेम किया, और मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। पर जितना ज्यादा उनको बुलाया गया उतना ज्यादा वे मुझसे दूर होते गए। वे बाल देवताओं के लिए बलि चढ़ाते थे और उन्होंने मूर्तियों के आगे धूप जलाया है। वह मैं ही था जिसने एफ्राइम को हाथ पकड़कर चलना सिखाया, परंतु उन्होंने इस बात को ना जाना कि वह मैं ही था जिसने उन्हें चंगा किया। मैंने मानवीय दया की डोरी और प्रेम के बंधन से उनकी अगुवाई की। उनके लिए मैं वैसा था जैसे कोई छोटे बच्चे को गाल तक उठाता है, और मैं झुककर उन्हें खाना खिलाता था। क्या वे मिस्र देश नहीं लौटेंगे और अश्शूर का राजा उन पर शासन नहीं करेगा, क्योंकि वे प्रायश्चित करना नहीं चाहते? उनके शहरों में एक तलवार चमकेगी, वह उनके झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मार डालेगी और उनकी योजनाओं का अंत कर देगी। मेरे लोग मुझसे दूर जाने का ठान लिए हैं, यद्यपि वे मुझे सर्वोच्च परमेश्वर कहते हैं, मैं उनकी किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं करूंगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हे इसराइल, मैं तुम्हें किसी और को सौंप दूं? मैं तुम्हारे साथ अदमाहा के जैसे व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जेबोइम के समान कैसे बना सकता हूँ? मेरा हृदय मेरे भीतर बदल गया है, मेरी सारी करुणा जागृत होती है। मैं अपने भयंकर क्रोध के अनुसार नहीं करूँगा, ना ही मैं एफ्राइम को फिर से नाश करूँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मनुष्य नहीं। तुम्हारे बीच एक पवित्र जन, मैं उनके शहरों के विरुद्ध नहीं आऊँगा। वे यहावे के पीछे चलेंगे, यहावे एक एक सिंह के समान गरजेंगे। जब वह गरजेंगे तो उनकी संतान कांपती हुई पश्चिम दिशा से आएगी। वे मिस्र देश से गोरिया पक्षी की तरह कांपती हुई और अशूर देश से पंडकी की तरह पंख फड़फड़ाते हुए आएगी। मैं उन्हें उनके घरों में बसाऊंगा, यहावे घोषणा करते हैं। इज़राइल का पाप। एफ्राइम ने मेरे चारों ओर झूठ का और इज़राइल ने छल का ढेर लगा दिया है, और यहूदा उदंडता से परमेश्वर के विरुद्ध है, और तो और वह विश्वास योग्य पवित्र जन के विरुद्ध है। होशेया अध्याय 12। एफ्राइम हवा को अपना भोजन बनाता है, वह सारा दिन पूर्वी वायु का पीछा करता है और अपने झूठ और हिंसा को बढ़ाता रहता है। वह अशूर देश से संधि करता है और मिस्र देश को जैतून का तेल भेजता है। यहूदिया के विरुद्ध भी यहावे का आरोप है। वह याकोब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देंगे और उसके कार्यों के अनुरूप उसको बदला देंगे। जब याकोब ने अपनी माँ के कोख से ही अपने भाई की एड़ी जकड़ ली थी, एक मनुष्य के रूप में उसने परमेश्वर से संघर्ष किया। उसने स्वर्गदूत से संघर्ष किया और उस पर प्रबल हुआ। वह रोया और उससे कृपा दृष्टि के लिए विनती की। बेथेल में वह परमेश्वर से मिला और वहां उसने उनसे बातें की। यहावे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहावे उनका नाम है, पर अवश्य है कि तुम अपने परमेश्वर के पास लौटो, प्रेम और न्याय के काम में बने रहो और हमेशा अपने परमेश्वर पर निर्भर रहो। व्यापारी गलत नाप का उपयोग करता है और छल करना उसको अच्छा लगता है। एफ्राइम घमंड करता है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं धनी हो गया हूँ, मेरी सारी संपत्ति सहित वे मुझ में कोई अपराध या पाप नहीं पाएंगे। जब से तुम मिस्र देश से निकलकर आए, मैं यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुम्हें तंबुओं में निवास कराऊंगा, जैसे कि तुम्हारे ठहराए त्योहार के दिनों में हुआ करता था। मैंने भविष्यवक्ताओं से बात किया, उन्हें कई दर्शन दिखाए और उनके माध्यम से उनके दृष्टांत बताए। क्या गिलआद दुष्ट है, इसके लोग बेकार है? क्या वे गिलगाल में बैलों का बलिदान करते हैं? उनकी वेदियां जोते गए खेत में पत्थरों के ढेर के समान होगी। याकोब तो आराम देश को भाग गया। इज़राइल ने एक पत्नी पाने के लिए सेवा की और उसका दाम चुकाने के लिए उसने भेड़े चराई। यहावे ने मिस्र से इज़राइल को निकालने के लिए एक भविष्यवक्ता का उपयोग किया। एक भविष्यवक्ता के द्वारा उसने उसका ध्यान रखा, पर एफ्राइम ने यहावे के क्रोध को बहुत भड़काया है। उसका प्रभु उसके द्वारा किए गए खून का दोष उसी पर रहने देगा और उसके अनादर के लिए उसको बदला चुकाएगा। होशेया अध्याय 13। इज़राइल के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। जब एफ्राइम बोलता था तो लोग कांप उठते थे। वह इज़राइल में बड़ा आदमी था, पर वह बाल देवता की आराधना का दोषी हुआ और मर गया। अब वे और अधिक पाप करते हैं। वे अपनी चांदी से स्वयं के लिए मूर्तियां बनाते हैं, जिनमें बुद्धिमानी से कारीगरी की गई है, और ये सब शिल्पकारों का काम है। इन लोगों के बारे में कहा जाता है, वे मानव बलि चढ़ाते हैं, वे बछड़े की मूर्तियों को चूमते हैं। इसलिए वे सुबह के कोहरे, सुबह के ओस के समान है जो गायब हो जाती है। वे खलिहान की भूसी के समान है जो घूमते हुए उड़ जाती है, या वे खिड़की से बाहर आते धुएं के समान है। परंतु मैं तब से यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जब से तुम मिस्र देश से निकलकर आए। तुम मेरे सिवाय किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, मेरे अलावा कोई और उद्धार करता नहीं है। मैंने उजाड़ निर्जन प्रदेश में गर्मी से तपते देश में तुम्हारा ध्यान रखा। जब मैंने उन्हें खाना खिलाया तो वे संतुष्ट हुए, और जब वे संतुष्ट हो गए तो वे घमंडी हो गए, और तब वे मुझे भूल गए। इसलिए मैं उनके लिए एक सिंह के जैसे होऊंगा, एक चीते के समान मैं रास्ते पर उनके घात में रहूंगा। मैं उनके लिए उस मादा भालू के समान बन जाऊंगा जिसके बच्चे छीन लिए गए हैं। मैं उन पर हमला करूंगा और उन्हें फाड़ डालूंगा, एक सिंह के समान मैं उन्हें फाड़ डालूंगा। एक जंगली जानवर उन्हें फाड़कर अलग अलग कर देगा। हे इसराइल, तुम नाश हुए क्योंकि तुम मेरे विरुद्ध, मेरे सहायक के विरुद्ध हो। कहाँ है तुम्हारा राजा जो तुम्हें बचाए? कहाँ है तुम्हारे सब नगरों के शासक जिनके बारे में तुमने कहा था, मुझे एक राजा और राजकुमार दो? इसलिए गुस्से में आकर मैंने तुम्हें एक राजा दिया, और अपने क्रोध में ही मैंने उसे तुमसे अलग कर दिया। एफ्राइम के अपराध बहुत हो गए हैं, उसके पापों का लेखा जोखा रखा गया है। उसको एक स्त्री के बच्चे जनने की सी पीड़ा होगी, पर वह बिना बुद्धि का एक बच्चा है। जब प्रसव का समय आता है तो उसे गर्भ से बाहर आने का ज्ञान नहीं होता। मैं इन लोगों को कब्र की शक्ति से छुटकारा दूंगा, मैं इन्हें मृत्यु से बचाऊंगा। हे मृत्यु, कहाँ है तुम्हारी महामारी? हे कब्र, कहाँ है तुम्हारा विनाश? मैं कोई करुणा नहीं करूंगा। यद्यपि वह अपने भाइयों के बीच उन्नति करे, एक पूर्वी हवा यहावे की ओर से मरुस्थल से बहेगी। उसके सोतों से पानी का फूटना बंद हो जाएगा और उसका कुआं सूख जाएगा। उसके गोदाम में रखी सब बहुमूल्य चीजें लूट ली जाएंगी। अवश्य है कि शमरिया के लोग अपने अपराध का दंड भोगे, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके छोटे बच्चों को भूमि पर पटक दिया जाएगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ दिए जाएंगे। होशेया अध्याय 14। आशीष पाने के लिए पश्चाताप। हे इसराइल, यहावे अपने परमेश्वर के पास लौट आओ, तुम्हारा पाप ही तुम्हारे पतन का कारण है। यहावे की बातों को मानो और उसके पास लौट आओ। उससे कहो, हमारे सब पापों को क्षमा करें और अनुग्रह पूर्वक हमें ग्रहण करें, कि हम अपने मुंह से धन्यवाद रूपी बलि चढ़ा सकें। अश्शूर हमारा उद्धार नहीं कर सकता, हम युद्ध के घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे, हम अपने हाथों से बनाए चीजों को फिर कभी ना कहेंगे हमारे ईश्वर, क्योंकि अनाथ को आपसे ही करुणा मिलती है। मैं उनकी बेवफाई को दूर करूंगा और स्वच्छंद रूप से उन्हें प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उनके ऊपर से हट गया है। मैं इसराइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह कुमुदिनी के फूल के समान खिलेगा, लबानोन के देवदार वृक्ष के समान। उसकी जड़ें नीचे दूर दूर तक फैलेगी, उसके कोमल अंकुर बढ़ेंगे, उसका वैभव एक जैतून के पेड़ जैसा होगा, और उसकी सुगंध लबानोन के देवदार के समान होगी। लोग फिर से उसकी छाया में निवास करेंगे, वे अन्न की तरह उन्नति करेंगे, वे अंगूर की लता की तरह बढ़ेंगे। इसराइल की प्रसिद्धि लबानोन के दाख मधु की तरह होगी। हे एफ्राइम, मूर्तियों से अब मेरा और क्या काम? मैं उसे उत्तर दूंगा और उसका ध्यान रखूंगा। मैं बढ़ते हुए सनोवर पेड़ के समान हूँ, तुम्हारा फलवंत होना मेरे कारण होता है। बुद्धिमान कौन है, उन्हें इन बातों का अनुभव करने दो? समझदार कौन है, उन्हें समझने दो? यहावे के रास्ते सही है, धर्मी उन पर चलते हैं, परंतु विद्रोही उन पर ठोकर खाकर गिरते हैं।